नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा के साथ पहली शिखर बैठक है।
ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी तियानचिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे। शिखर बैठक से अलग श्री मोदी अनेक वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। भारत 2017 से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। भारत ने वर्ष 2022-23 के दौरान इस संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता की थी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष नवंबर में इस मिशन को केंद्रीय योजना के रूप में स्वीकृति दी थी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और किसानों की लागत को कम करके जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षित भोजन के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित दृष्टिकोणों के साथ कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री अगले महीने की 2 तारीख को नई दिल्ली में 4th सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि पहली बार इस प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 18 देशों और क्षेत्रों की 350 प्रदर्शनी कंपनियों अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। आज देश में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इस वर्ष का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। अंतरिक्ष दिवस समारोह के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। इस बीच इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के अनुरूप क्षमता संवर्धन और निजी क्षेत्र का गहन एकीकरण 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर मेकिंग ए डायनामिक वाइब्रेंट स्पेस सेक्टर इन द कंट्री। बाय 2040 वी विल बी इन पार विद एनी अदर स्पेस फेयरिंग नेशन इन टर्म्स ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ satellite technology, in terms of application, and we are going to contribute for the Viksit Bharat 2047 to make India as a developed country, make Bharat as a developed country before we celebrate 100 years of independence.
उत्तराखंड में चमोली जिले में रात भर हुई तेज बारिश से थराली तहसील में व्यापक नुकसान हुआ है। वर्षा से मलबा आवासीय भवनों, दुकानों और सरकारी परिसरों में घुस गया है। मलबे में एक युवती के दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासनिक दल बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हैं, जबकि राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। मलबे से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
थराली में रात में अतिवृष्ट से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफी अतिवृष्टि हुई, काफी जो नुकसान हुआ है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ हमारी टीम थी।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।